چند منٹ یہاں رکیں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی ہی دفعہ جب میں نے تم کو دیکھا، اسی پیر کی شام کو جب تم میرا ہاتھ مانگنے آئے تھے، یاد ہے تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ پوری زندگی امی جان کے جانے کے بعد تم میرا ہر طرح سے خیال رکھو گے۔ اس دن تمہاری انسانیت مجھے بھا گئی۔ 26 سال تک میں تمہاری اسی انسانیت پر جیتی رہی۔ ابھی جو میرے حالات ہیں، ان سے الگ ہو کر تم بڑے آرام سے اپنی زندگی جی سکتے تھے، اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا۔
بے رب تو باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مجھے تم سے پیار ہے زہرا۔ اگر میں تمہارے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں تو میں اپنی خاطر، نہ کہ تمہاری خاطر۔
تم نے مجھے برداشت کیا۔ کوئی بھی ایک معذور عورت کے خاطر اپنی زندگی فدا نہیں کرتا۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں بے عقل عورت ہوں اور تمہارے احسان کی قدر نہیں کرتی۔ اب معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا۔
میں بے وقوف تھا، میں نہیں جانتا میں کیوں اس لفڑے میں پھنس گیا۔
میں پولیس کے پاس نہیں جاؤں گی، لیکن یقین ہے خدا یہ کام کرے گی۔
میں خدا کو راضی کر لوں گا۔
اب وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ اس سے مربوط ہے، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہر روز تمہیں دیکھوں اور بھلا دوں کہ تم نے کیا کیا۔ میں اس دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتی ہوں جو بیچارے لوگوں کے پیسوں سے سجا ہو۔
میں لوگوں کے حقوق دے دوں گا اور گھر میں مشکوک پیسہ نہیں لاؤں گا۔
اب بہت دیر ہو چکی ہے داؤد، بہت دیر ہو چکی ہے۔ تم جانتے ہو مجھے تم سے کتنی محبت ہے، لیکن تمہارا یہ کام برداشت نہیں کر سکتی۔
السلام علیکم حاجی صاحب۔
علیکم السلام۔
یہ لیجیے آپ کی خدمت میں، آپ کی مزدوری جو ماں کے دودھ سے بھی زیادہ جائز ہے۔
کس لیے؟
بھیڑیں چرانے میں غلام رضا کا ساتھ دینے کے لیے۔
غلام رضا کا ساتھ دینا تو کام نہیں ہے۔
غلام رضا کی قسم نہیں لیں گے تو ناراض ہو جاؤں گا۔
قسم نہیں کھاؤ مصطفیٰ، قسم نہیں کھاؤ۔
میں جانتا ہوں کہ آپ اپنا سب کچھ دے چکے ہیں، سہمے امام سے بھی اپنے لیے کچھ نہیں لے رہے ہیں۔ یہ تو بہت ناانصافی ہے حاجی صاحب، یہ رکھ لیجیے۔
اچھا ٹھیک ہے،
اب ہوئی نا بات۔
راضی ہو گئے؟
خدا آپ کا بھلا کرے، میرے ذمے جو قرضہ تھا وہ آپ نے چکا دیا۔
ٹھیک ہے، اب یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ، لوٹائیں گے تو ناراض ہو جاؤں گا۔
یہ کیا بات ہوئی، آپ ہمیشہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، اجازت دیں۔
السلام علیکم۔
علیکم السلام نجمہ صاحبہ۔
یہ وہی چیز ہے کہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ چھان مارا۔
احمد علی لائے ہیں کیا؟
نہیں، شیخ فرید لائے ہیں۔
शेख फरीद, शेख फरीद के पास ये कहाँ से आई?
खुदा ने उन्हें दिया, कहा कि हाजी हबीब के तहखाने में उसको मिली।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नजमा बेगम, इससे मुझे एक कहानी याद आई। एक डूबी हुई कश्ती का अकेला निजात याफ्ता किसी दूर दराज जजीरे में फंस गया था। हर रोज निजात की आस लगाए साहिल पे आके बैठ जाता और आसमान तकता रहता था। आखिरकार नहायत थकावट और नाउम्मीदी की हालत में लकड़ियों और तख्तों से अपने लिए एक झोपड़ी बनाई। सुकून की पहली रात दूर से देखा कि उसकी झोपड़ी जल रही है, तो खुदा के हुजूर फरियाद करने लगा कि ऐ खुदा, तू कैसे राजी हुआ कि मेरी झोपड़ी जलाए। अगली सुबह एक कश्ती की आवाज से जो साहिल के नजदीक आ रही थी, नींद से उठा। कश्ती उसके निजात के लिए आई थी। निजात दहिंदों ने कहा, खुदा का शुक्र करो कि कल रात हमने साहिल पे आग के शोलों को देखा।
तरक्की करने के कुछ तकाजे होते हैं, बाज लोगों को इन तकाजों के पूरा होने की कीमत चुकानी पड़ती है। यही अमेरिका जो आज इतना तरक्की याफ्ता है, उसने कहां से शुरू किया? रेल से। जब रेल आई तो सारे देहात मिट गए, मकामी लोग हिजरत पर मजबूर हुए। हुकूमत ने एक हद तक कंट्रोल शुदा करप्शन को खुद ही राइज करने का काम किया। अभी सभी राजी हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं मिर्जाई? थोड़ा सा करप्शन तरक्की के लिए जरूरी है, जैसे जरासीम का इंजेक्शन। थोड़ा उसमें जरासीम होती है, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वो हाजी मेहदवी साहब का क्या बना?
उनसे बात की है।
तो क्या कहा?
कहा बताएंगे।
तो फिर बैठे क्यों हो? कुछ हुआ है जो मुझे नहीं मालूम?
सारे मामलात हाथ से निकल गए हैं, नहीं जानता क्या करूं।
अपनी साली की जिद से परेशान हो? चाकू खुद अपना हाथ नहीं काटा करता।
सिर्फ वो ही नहीं, बीवी भी सब कुछ जान चुकी है।
उस वक्त जब हमने मिलकर काम शुरू किया था, तो मैंने कहा था कि हर चीज को खोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैंने कहा था हर तरफ से जीरो हो जाओगे, जीरो से शुरू करना पड़ेगा, हत्था घरेलू तालुकात, ये वो।
काफी है रजाई साहब, काफी है। गाड़ी कहां रोके?
तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो?
प्लीज बताइए गाड़ी कहां रोके?
अभी बहुत रास्ता बाकी है,
मजीद नहीं होता।
अगर रास्ता सही है तो ये ना कहो कि चूंकि बहुत कम लोग उस रास्ते से जा रहे हैं तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर रास्ता हक है तो जाओ, और लोगों की बातों और निगाहों की बिल्कुल फिक्र ना करो। जो काम सही है उसे अंजाम दो, क्योंकि खुदा हमेशा हमारा ख्याल रखता है। एक सलवात पढ़ लें। आखिर में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि आप लोग जोहर आशूरा की मजलिस में हाजी हबीब अंसारी के घर हाजिर हो जाएं। मजलिस हाजी शहीदी साहब पढ़ेंगे। ऐ परवरदिगार, हमें राह रास्त पर हिदायत कर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद। या अल्लाह,
हमें मस्जिद के लिए जरा खुले हाथों से चलना होगा, अब जो आपकी मर्जी।
खुदा जजाए खैर दे, खुदा भला करे जो मस्जिद की इतनी फिक्र है।
जी सलाम।
अलैकुम सलाम।
सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम शहीदी साहब,
आप ठीक हैं? हाजी साहब माफ कीजिएगा, आपको जहमत हुई, आपसे एक मिनट बात हो सकती है?
जनाब आप तशरीफ
रखें। जी जी माफ कीजिएगा।
हाँ बोलो।
माफ कीजिएगा, एक मसला पेश आया, मैंने मुनासिब समझा कि पहले आपसे ही इस बारे में बात कर लूँ।
मुझसे अगर कोई मदद हो सकी तो मैं दरेख नहीं करूँगा।
हकीकत यह है कि मेरी सास ने फैसला किया है कि हाजी हबीब के घर को आशूरा की मजलिस के लिए तैयार करें, और अब्बा जान से कहा है कि उस दिन की मजलिस को वो पढ़ें।
हाँ मुझे मालूम है, अभी अभी मैंने लोगों को भी इत्तला दे दी है।
जी लेकिन मेरे ख्याल में हाजी साहब की मौजूदगी पर उनका इसरार खुद मजलिस के लिए नहीं है, बल्कि मकसद कुछ और है।
क्या आपसे कुछ कहा है?
बहुत माना खेज, यानी कहा है कि मजलिस मेरी खातिर मुनाकिद करवा रही हैं।
मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ।
देखिए हाजी साहब, उन्होंने कहा है कि वो आदमी जो इन सब मुसीबतों और मेरे जेल जाने का बाइस बना है, उससे बात की और उसको जोहरे आशूरा तक मोहलत दी है कि वो सब कुछ ठीक कर दे, और अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो सब लोगों के सामने उसको रुसवा कर देंगी।
यानी मुरादी से बात की है?
जी हाँ बात यही है। मैं कहता हूँ कि अगर उससे बात करके उसे फुर्सत दी है तो इसका मतलब कि वो अपना ही आदमी है। हकीकत में इस किस्से के बाद मैंने सब पर शक किया है, और जिस दिन आपने आकर के हाजी साहब से मदरसे की तासीस की बात की, एक फर्द पर मेरा शक और पुख्ता हो गया।
आपका मतलब?
जानता हूँ हाजी साहब।
मोहम्मद हुसैन, ये शको गुमान सही नहीं है।
जानता हूँ हाजी साहब, लेकिन हकीकत में इस किस्से को समझने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है।
अगर आपका मतलब मुरादी को ढूंढना है तो ये बईद है।
मजीद के साथ आपके रबते को मद्देनजर रखते हुए आप उससे मुरादी की जगह पूछ सकते हैं।
चंद दिन हुए मुझे मजीद की भी कोई खैर खबर नहीं है। लेकिन एक फर्द है जो शायद हमारी मदद कर सकता है।
हाजी साहब आप तो बेहतर जानते हैं, क्या इस काम को दोस्त के साथ खयानत नहीं कहते? उसके साथ दगाबाजी नहीं है ये?
मेरे भाई क्या आप नशे की हालत में मजे नहीं उड़ाते थे, मस्ती की हालत में फिजाओं में नहीं घुमा करते थे और मुश्किलात को भूल नहीं जाते थे?
वो सब याद ना दिलाए हाजी साहब।
अब्बास साहब अपना सर ऊंचा रखें और जवाब दें, फिजाओं में नहीं घूमते थे? क्या मजीद मुरादी साहब ने जबरदस्ती आपसे नशा नहीं छुड़वाया? क्या ये सही नहीं है?
वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं।
यानी आपको इस मजे की हालत से निकाल दिया?
जी आप सही फरमा रहे हैं।
तो क्या मजीद साहब ने आपके साथ कोई खयानत की है? ये जो आपको नशे की लत और मजे से आपको छुड़वाया है, क्या अच्छा काम नहीं किया है?
हाँ अच्छा किया है, क्योंकि नशे ने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की थी।
इस वक्त मजीद और उसके भाई की यही हालत है, खासकर उसके भाई को अपने काम का नशा चढ़ा हुआ है, हमें उसका नशा निकालना होगा। मैं नहीं जानता आप क्यों इतने दो दिल हैं। मजीद के भाई ने पूरे शहर का पैसा खाया है, जितनी जल्दी उसको ढूंढ निकालेंगे खुद उसके लिए अच्छा होगा। अब्बास साहब मैं उलमा के इस लिबास की कसम खाता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना सिर्फ खयानत नहीं है बल्कि दोस्ती का तकाजा भी है।
लेकिन हाजी साहब अगर मजीद समझ गया कि मैंने ये काम किया है तो मेरे साथ।
पहली बात तो ये कि मजीद इस तरह का इंसान नहीं है, और दूसरी ये कि दोस्ती खत्म करता है तो कर दे। आप तो उसके हक में बेहतर कर रहे हैं ना, आप मजीद की आखिरत की भलाई के लिए उसकी दोस्ती से गुजर रहे हैं ना।
मुझे चंद घंटों की मोहलत दें।
अरे भाई मैंने खुद को इतना थकाया फिर भी आपको चंद घंटों की मोहलत चाहिए।
देखता हूं कि वो है कहां।
जाओ मेरे भाई जाओ, कामयाब कामरान रहो।
फिलहाल इजाजत दीजिए।
खुदा हाफिज।
क्या हुआ?
कुछ नहीं, ढूंढने के लिए चंद घंटे की फुर्सत मांग रहा था।
तुम कहाँ हो? तुम्हें सारी जगह ढूंढ मारा, 10 दफा फोन किया, अपना फोन क्यों नहीं उठाते?
हुआ क्या है?
कुछ नहीं, घर का माहौल खराब हो गया है, अम्मी अब्बू की लड़ाई हो गई है।
तो तुम क्यों परेशान हो? जरूर हाजी हबीब के घर में मजलिस के बारे में लड़ रहे होंगे।
तुम्हें पता है क्या हुआ?
मुझे कहाँ से पता हो सकता है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं?
जरूर तुम जानते होगे कि अम्मी अब्बू कहाँ पर हैं।
नहीं आरश, तुम खुद जाकर के उनसे पूछो।
तो मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? कुछ पता है तो बता दो।
अब्बास
ढूंढ निकाला उसे।
आओ दफ्तर चलते हैं जब तक कि हाजी साहब खुद।
किसको ढूंढ निकाला?
आरश तुम चुप रहो।
मैं पूछ रहा हूँ किसको ढूंढ निकाला?
तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है।
तुम लोग मजीद को ढूंढ रहे हो ना?
आरश रुक जाओ तुम।
यार आखिर बात क्या है, मुझसे छुपाते क्यों हो तुम?
समझना था, तुमने समझ लिया है, अब तुम जाओ, जब जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लूंगा। चलो।
क्या मतलब है जब जरूरत होगी तो बुला लूंगा?
उस आदमी को ढूंढ निकाला है जो उनको सरहद पार कराएगा,
उसको पता तो नहीं चलने दिया ना?
नहीं, मैंने उससे कहा एक आदमी को इमरजेंसी में सरहद पार कराना है, उसका पैसा भी नकद है।
अच्छा?
हाँ, तो कहा ले जाएगा ना।
तुमने बहुत अच्छा किया, जल्दी जाएंगे तो मजीद और उसके भाई तक पहुंच सकेंगे।
शायद अब तक चले गए हों,
शायद ना भी गए हों। ये लोग पूरा एक ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद सभी को एक साथ सरहद पार कराते हैं।
हाजी साहब, आपको भी उनकी जबान खूब आती है।
हाँ, एक अरसे तक मैं जेल में रहा हूँ, अलबत्ता मुबल्लिग के उनवान से। चलिए
तशरीफ ले चलिए।
हेलो, सलामुन अलैकुम शेख बरात अली। मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया है, नमाज और मेंबर की जहमत आपके ज़िम्मे डाल रहा हूँ। यकीन है यहीं पर है?
जी, उस आदमी ने यहीं का एड्रेस दिया।
तो चलें उसके
साथ बात करें। रुक जाइए आप लोग, मैं जाके बात करता हूँ, चलें पास।
हाजी साहब, अगर मुनासिब समझें तो मैं नहीं आऊँगा, नहीं चाहता कि मजीद मुझ पर इतने एहसानात के बाद मुतवज्जे हो कि मैंने उनका ठिकाना बताया।
जैसा तुम बेहतर समझो।
बहुत बहुत शुक्रिया,
खुदा हाफिज़।
महदवी साहब, उससे कहें कि अब्बू ने जो गाड़ी उसके लिए खरीदी थी उसको वापस देने आया हूँ, किसी तरह से बस उसे राजी कर लें।
अच्छा ठीक,
आपका शुक्रिया।
इजाजत हो तो मैं चलता हूँ।
कहाँ जा रहे हो?
मैं यहाँ ना ही रहूँ तो बेहतर है। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अली अकबर इजाजत लेने इमाम के पास आए। इमाम ने पहली ही मर्तबा में अली अकबर को इजाजत दे दी, लेकिन शहजादा कासिम कई दफा इजाजत लेने इमाम के पास गए। ऐसा नहीं कि इमाम के दिल में मोहब्बत नहीं है, नहीं, जब अली अकबर मैदान की तरफ गए इमाम ने सर नीचे किया और रोए। यह गिरिया आहो जजा का रोना नहीं है, यह मोहब्बत का रोना है। आप जानते हैं यह मोहब्बत कितनी ज्यादा है। इमाम ने कई दफा फरमाया कि जब भी मुझे पैगंबर की याद आती है तो अली अकबर की सूरत को देखता हूं। आशूरा के हर लम्हे में हमारे लिए सबक पोशीदा है, करबला का गोशा गोशा दर्सगाह है। क्या इमाम अपनी गैबी और रूहानी कुव्वत से काम नहीं ले सकते थे और जंग पर गलबा नहीं पा सकते थे? कर सकते थे, लेकिन फिर हमें यह दर्स कौन देता? इमाम हमें क्या समझाना चाहते थे कि अपनी तमाम जानो माल को इस्लाम की राह में कुर्बान करें? इमाम इस्लाम की राह में अपनी हर चीज से गुजर गए।
अकबर भाई, मुझे माफ कर दो।
अजीज फर्द पैगंबर से शबाहत रखने,
तुमने मेरे हक में कोई बुराई नहीं की जो मैं तुमको माफ करूं।
इमाम ने
अकबर गाफिल, अकबर गाफिल मैं ही कहा करता था मेरे दोस्त, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो।
इस्लाम से दिफा में किसी भी कोशिश से दरेग नहीं किया और इस्लाम के
और भी बहुत कुछ तुम्हारे पीछे कहा है।
दरख्त की आबियारी के लिए रेगजारे करबला को अपने और अपने बच्चों के खून से
तुम्हारी बच्ची को
रंगीन कर दिया।
मुझे माफ कर,
हम और आप जैसे लोग याद करबला को किस तरह से मना सकते हैं जबकि हमारे दिल में उनके लिए जाहिरी मोहब्बत है। अब मैं चंद अशार जनाब अली अकबर की रुख्सत के बारे में पढ़ता हूं।
سر لیلا چشم مجنون به پای لیلا مان. علی اکبر علی اکبر شد، جمله
ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جب علی اکبر میدان جنگ میں گئے تو ان کے بدن پر اس قدر نیزہ و شمشیر کے زخم لگے تھے کہ ان کو ابا کے ساتھ دفن کیا.
سلام علیکم. کل کے باغ و بوستان کے دوست، آج ہم سے کیوں ہو گریزہ میرے دوست؟ مجی صاحب، جانتا ہوں تم یہی ہو، کچھ اور نہیں کہہ سکتے تو میرے سلام کا جواب تو دو.
سلام حاجی صاحب.
بھائی مجید، مجھے تم سے بالکل یہ توقع نہیں تھی.
حاجی صاحب، اگر حمید ایران سے چلا جاتا اور ماں اس کو نہ دیکھتی تو ان کی حالت خراب ہو جاتی، لیکن یقین کریں ابھی وہ بہت خوش ہیں.
تم نے اپنی ماں سے ابھی کیا کہا؟ یہ کہا کہ غیر قانونی طور سے ملک سے جانا چاہتے ہو.
میں اور امی غیر قانونی طور پر نہیں جا رہے ہیں.
تو تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟
کہا نا حاجی صاحب، امی کو لایا تاکہ حمید سے مل سکیں، پھر ان سے یہ کہا کہ انہیں کربلا بھیج رہے ہیں.
کربلا؟ تمہارا بھائی اس وقت کہاں ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے.
چند گھنٹے پہلے اپنے باقی کام نپٹانے چلے گئے، کل ایک آدمی انہیں بارڈر کے پار لے جائے گا.
تو ان کو کہاں ملنا ہے؟ مجید صاحب، حمید کہاں ہے؟ دیر ہونے سے پہلے بتا دو.
آپ کو مجھ سے کیا توقع ہے حاجی صاحب؟ اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے، کیا نہیں کرتے؟
بھائی مجید، ذرا عقل سے کام لو. عقل انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے. بھائی مجید، تم میرزائی صاحب سے ایک گاڑی لینے پر اتنے حساس ہو گئے تھے، اب کیوں تمہارا ضمیر پریشان نہیں ہے؟ جانتے ہو کتنے لوگوں کے حقوق کھائے گئے؟ کاغذات ہیں تمہارے پاس؟
حمید کے پاس ہیں. حاجی صاحب، آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گے؟
کیسا وعدہ؟
میں آپ کو حمید کے پاس لے جاؤں گا، آپ ان سے کاغذات، دستاویز اور پیسہ لے لیجئے، لیکن ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. اگر یہ مسئلہ منظر عام پر آ گیا تو ایک خدا کا بندہ جس کا میں بہت احسان مند ہوں شہر میں رسوا ہو جائے گا. آپ تو کسی کی بے عزتی پر راضی نہیں ہوں گے نا
میرزائی صاحب؟
اکبر صاحب.
کیا ہے؟
سب عورتیں کہہ رہی تھی کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو اتنا اچھا داماد خدا نے آپ کو دیا ہے.
या अल्लाह। चलो बेटी चलो।
अबू।
क्या है बेटी?
क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी वजह से भी इस मोहब्बत में जरा सी भी कमी आए, यानी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो जाए कि मैं सारी उम्र आपसे नाराज रहूं।
तुम कहना क्या चाहती हो बेटी?
मैंने आपकी इन बातों के बारे में कि मेरी और बारात अली की शादी नहीं होनी चाहिए बहुत सोचा, लेकिन आपकी किसी बात से मुतमईन नहीं हुई। लेकिन बहरहाल आप मेरे वालिद हैं, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकती। आपने कहा बारात अली के साथ शादी नहीं करो, मैंने कहा ठीक है नहीं करूंगी, लेकिन ये याद रखें कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। मेहरबानी करके आप किसी भी रिश्ता मांगने वाले को इस घर में ना आने दें। मैं आपके साथ रहकर आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। आपकी सारी जहमतों की तलाफी करना चाहती हूँ। अब्बू जान, जब तक मेरे बाल सफेद ना हो जाएं, मैं इसी घर में रहूंगी।
सलाम अलैकुम हाजी साहब।
अलैकुम सलाम, हाल अहवाल कैसे हैं?
बहुत बुरा हाजी साहब।
पर वो कैसे? आप तो खुदा का शुक्र करें कि आपका साया घर वालों के ऊपर मौजूद है, जिंदगी की गाड़ी चल रही है। मैं भी तो आपका ख्याल रख रहा हूँ।
आप साहिब इख्तियार हैं हाजी साहब, ये आपसे ही ताल्लुक रखता है, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। हाजी साहब, आपके पास अभी कुरान है?
जी जी।
आप मुझ पर एक मेहरबानी कीजिए, आप मेरे लिए एक इस्तखारा देख दीजिए।
अफसोस के साथ कहता हूँ, मैं आपके लिए इस्तखारा नहीं कर सकता।
अरे क्यों?
क्योंकि आप बारात अली के साथ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए इस्तखारा करना चाहते हैं।
जी हाँ, इसमें एतराज़ क्या है?
हकीकत में मैं शादी के बारे में इस्तखारा करने के बिल्कुल मुखालिफ हूँ। अगर आपको रिश्ता मांगने वाले के बारे में शक है तो मशवरे और अक्ल की तरफ रुजू से ये मसला हल हो सकता है। या आपने कुछ देखा या सुना है तो आपका दिल कभी भी साफ नहीं होगा और बेहतर है आप मनफी जवाब दें। मुझे लगता है आप थोड़े से मुरद्दद हो रहे हैं।
असल में हाजी साहब, बारात अली की तकरीर सुनते वक्त मुझे पता चला कि ये लड़का बहुत ही नेक है।
तो उसके तलबा रहने से मुआफिक है, है?
हाजी साहब, लेकिन मैं इस पैर का क्या करूं? मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो मेरे हाथ की लाठी बने, मेरे इस लंगड़े पैर की जगह वो ही जमीन पर दौड़े।
तो क्या आपके ख्याल में बारात अली ये काम नहीं कर सकता?
क्यों नहीं हाजी साहब, क्यों नहीं? लेकिन इस जवान को तालीम जारी रखनी चाहिए, ना ये कि मेरी जमीनों की खातिर अपना वक्त बर्बाद करे।
वो एक तलबा है, कैसे हो सकता है कि एक तलबा को माशरे की फिक्र हो लेकिन अपने नजदीक तरीन अफराद की फिक्र ना हो? मैं आपके लिए इस्तखारा नहीं कर सकता। आपको मशवरे की ज़रूरत थी, वो मैंने दिया, बाकी आप अपनी इस्लाह बेहतर जानते हैं।
नहीं है।
क्या मतलब के नहीं है? हम एक घंटे से वहां पीछे मुंतजिर हैं मजीद साहब।
क्या तुम्हें यकीन है कि उसको यहीं आना था? हम बेकार में ही यहाँ आ गए हैं, उसने हमें धोखा दिया है।
तुमने क्या कहा अपने भाई से? क्या कहा तुमने अपने भाई से कि उससे किस लिए मिलना है?
कहा मैं भी गैरकानूनी तौर पर ही आना चाहता हूँ। शक ना करें इसलिए कहा कि मुझे डर है कि मुझ पर भी पाबंदी लग चुकी हो।
तुम्हारी इसी बात से उसको शक हो गया है कि एक ही रात में तुम्हें पाबंदी की खबर कैसे मिल गई?
तो क्या कहना चाहिए था?
अरे भाई ये बकवास कर रहा है, इसका भाई यहाँ से भाग गया है और ये खामखा अच्छा, हमें बेवकूफ बना रहा है।
बातें किस लिए कर रहे हो?
वक्त बर्बाद कर रहा है।
जाने चुप कर, मुझे इस वक्त गुस्सा मत दिलाओ।
चाहिए इसका भाई जो ठहरा।
सुने मेरी बात, उस वक्त मुझे यही आइडिया बेहतर लगा। अब हमारे पास टाइम नहीं है, ये अब्बास कह रहा था कि वो बहुत जल्द निकलने वाले हैं।
तुम जानते हो उसका अगला ठिकाना कहाँ है?
जी हाँ,
तो चलो मैं जानता हूँ। मुरादी हमें नहीं मिलने वाला, मेरी बात याद रखना, मुरादी नहीं मिलने वाला, समझे?
तुम हटो और मंजीत को गाड़ी चलाने
मत करो। ठीक है, मैं चलाने को
संभालो। हम हां उलझ रहा है, इसको मना कीजिए।
हाजी साहब, नहीं आपस में है कि इसने उसके साथ सांठगांठ कर दी
हो।
हम जा कहां रहे हैं? मुझे पता है कि यह हमें बहका रहा है।
बस भी करो तुम अब।
हाजी साहब, यह बिना वजह हमें बेवकूफ बना रहा है। इसने और इसके भाई ने लोगों का पैसा हड़प लिया और हमें फंसा रहा है। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं देखना उसकी क्या हालत करता हूँ।
अपनी ज़बान को बंद रखो, हाजी साहब की वजह से कुछ नहीं बोल रहा हूँ।
तो इसका मतलब तुम अपनी मनमानी चला लोगे? हाथ हटाओ अपना।
अरे भाई तुम लोग बस भी करो।
हाजी साहब, आप भले आदमी हैं लेकिन ये आपके जैसे नहीं है। इन्होंने प्लानिंग करके लोगों का पैसा हड़पा है।
भले आदमी अगर ऐसा करना होता तो बहुत पहले भाग चुका होता मैं।
लेकिन अभी तुम कर क्या रहे हो? वही तो कर रहे हो जो तुम करना चाहते थे। इस बीच में हम दोनों को बिना वजह फंसा दिया। जो किया वो किया, लेकिन तुम भी उसके साथ मिल गए हो। हाथ क्यों लगा रहा है? हाथ हटा, हाथ मुझे भी चलाना। तुम सबके मिली भगत है। भाई मुझे मिल गया, तो छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों भाइयों से मैं बदला लेकर रहूंगा। बेवजह हमें फंसा दिया।
क्यों लड़ रहे हो
मोहम्मद हुसैन? तुम तो चुप ही रहो। अगर तुम नहीं बोल रहे कम से कम मुझे तो बोलने दो। मैं देख लूंगा इसको और इसके भाई को भी।
क्या सही बात है? क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? दोनों को भगा दिया जाएगा। तुम दोनों को सजा मिलेगी। ओ मैं जीता हूं।
हुसैन, आराम से, आ जाओ। शाबाश, मेरा सहारा ले लो। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, तुम ठीक हो?
आरश, आंखें खोलो। आरश, आरश, आंखें खोलो। आरश,
भाई मजीद, भाई मजीद, या अल्लाह, भाई मजीद, या अल्लाह, या अली, या अली, भाई मजीद, भाई मजीद, भाई मजीद।
भाई मजीद, भाई मजीद मेरे जिगरी दोस्त,
आरश,
भाई मजीद, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए?
आपका शुक्रिया, खुदा हाफिज। आपका शुक्रिया, खुदा हाफिज।
ये बात तो सभी जानते हैं कि मुझ पर और मोहम्मद हुसैन पर यह मुसीबत किसने नाजिल की है, सिवाय आपके।
क्या तुम नहीं चाहते कि जल्द से जल्द इस केस से छुटकारा पाओ? तो थोड़ा सा और रुको और जोहरे आशूरा तक इंतजार करो, खुद ही सब कुछ जान जाओगी। कोई नई बात हुई है क्या दाऊद साहब? जोहरा को तो इस वक्त घर पे होना चाहिए, जरूर मसरूफ होगी, खुद ही फोन कर लेगी। क्या है, इस वक्त मुझसे बात करने के लिए फोन किया है? कौन सी खबर? क्या हुआ? आप कहाँ हैं?
लगाओ मुझे।
मुझे भी अफसोस है।
तुमको क्यों अफसोस है?
इसलिए कि आरश मेरा भी बेटा।
वो तुम्हारा बेटा होता तो उसकी जिंदगी के साथ ना खेलती।
मैंने जो भी किया तुम्हारे और आरश के लिए किया।
दाऊद, हमने और तुमने एक साथ कितनी लंबी जिंदगी गुजारी, मुझे तुम पर कितना भरोसा था। अफसोस, मैंने किस पर इतना भरोसा किया।
गलती हो गई सारा, अब समझ गया हूँ कि कितनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ।
गलती कर दी, बस इतनी सी बात? तुम्हारी गलती की वजह से मेरा बेटा बेहोश पड़ा है। देखो उसे, गौर से देखो उसे।
या अल्लाह। जोहरा बेटी, अल्लाह ताला को ये पसंद है कि उसके बंदे जब खुश और खुशहाल हों तो उसे याद करें, लेकिन हम बंदों पर जब मुसीबत आन पड़ती है तो अल्लाह ताला का दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन अल्लाह इतना बड़ा और मेहरबान है कि अपने कमज़ोर बंदे की दरख्वास्त को रद्द नहीं करता है।
हाजी साहब, मेरी हालत ठीक नहीं है, कुरान और दुआ की तरफ हाथ नहीं उठ रहे।
खुदा की रहमत से मायूस ना हो बेटी, तुम्हारे बच्चे को शिफा देने से खुदा का कुछ कम नहीं होता। अपने निगाह वसी रखो।
हाजी साहब, मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझ पर इतनी बड़ी मुसीबत नाजिल हुई?
कौन कहता है कि ये हवादिस मुसीबतें हैं? खुदा अपने मुकर्रब और अजीज बंदों को इम्तिहान में डालता है। इन इम्तिहानात से कामयाब होकर निकलना आसान काम नहीं है बेटी। अब इजाजत दो, खुदा हाफिज। खुदा बेटी, सैयदुश्शोहदा की आज़ादारी की मजलिस खुदा की तरफ से एक तौफीक है जो तुम्हें नसीब हुई है। ख्याल रखो कि इन मजालिस को अपने ज़ाती मसाइल और ऐसे प्रोग्रामों से जिनसे साहिब अज़ा राज़ी ना हो ख़राब ना करो। यह ख़ानदान सखावतमंद ख़ानदान है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा मोहम्मद हुसैन, हमें उस आदमी पर अपनी आंखों से ज़्यादा भरोसा था।
मैं खुद भी हमेशा यही समझता था कि दाऊद साहब हमारी खैर व सलाह चाहते हैं।
तुम क्या करना चाहते हो?
नहीं मालूम, हमारे पास कोई सबूत।
क्या अबू जान को बताओगे नहीं?
वो मानेंगे नहीं।
सब कुछ चंद सेकंड के दौरान पेश आया। एक्सीडेंट से पहले मजीद और आरश आपस में लड़ रहे थे, उसी की वजह से हादसा पेश आया।
खुदा उसको बख्शे, मैं उसके माँ बाप को जानता था। खुदा उसकी माँ को सब्र दे।
इलाही आमीन। मजीद मरहूम पाक दिल इंसान था, वो बहुत चाहता था कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करने में मदद करे।
उसके भाई का क्या हुआ?
उसके फरार की खबर पुलिस को दे दी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला।
अब दाऊद साहब का पर्दाफाश नहीं कर सकते क्योंकि मजीद मरहूम हमारा इकलौता गवाह था।
इंसान को दलील और सबूत के बगैर किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए बेटा।
अब्बू जान, मैंने परसों हुदा साहिबा से बात की, उन्होंने कहा कि एक आदमी को मोहलत दी है कि सब कुछ ठीक कर दे, वरना आशूरा के दिन सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देंगी।
तुम ये कैसे जानते हो कि वो फर्द मीर्जाई है?
अबू जान, अब मेरे लिए हर चीज़ दिन की तरह रोशन हो गई है। मिर्ज़ाई और खजाई मिले हुए हैं, उन्होंने आपके लिए प्लान बनाया था कि आपको बदनाम करें ताकि उनके प्लान और प्रोग्राम को रोक न सकें। आबनुमा प्रोजेक्ट में मेरे मकरूज होने के हादसे ने भी उनके प्लान को आगे बढ़ाने में उनकी मदद की।
ये सब अंदाजे और गुमान है बेटा। मिर्ज़ाई और खजाई की दोस्ती उन पर इल्जाम लगाने के लिए काफी नहीं है।
हाजी साहब, मजीद ने मरने से पहले मुझसे एक बात कही, मुझे कसम दी कि जब पैसे मिल जाएं तो उसके भाई को जाने दें ताकि मिर्जाई साहब की बेइज्जती ना हो।
ये जो आपने कहा उसकी बातों का मतलब था या नहीं, उसने दकीकन यही बात की?
मैं खुद भी उसकी बातों से इतना हैरान हुआ कि उसका एक एक लफ्ज मेरे जहन में बाकी रह गया है।
अजीब है।
डॉक्टर अब्दी जनरल वार्ड में आ जाइए, डॉक्टर अब्दी जनरल वार्ड में आ जाइए। डॉक्टर हिम्मती सर्जरी डिपार्टमेंट में आ जाइए, डॉक्टर हिम्मती सर्जरी डिपार्टमेंट में आ जाइए।
माफ कीजिएगा, मेरा बेटा कैसा है?
परेशान ना हो, उनकी जगह बदल दी है, वो उस तरफ है।
बहुत शुक्रिया। जानता हूं क्या कहना चाहते हो। कहना चाहते हो कि मैंने झूठ बहुत बोला। हमेशा कहता रहा कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर सब कुछ बद से बदतर होता चला गया। मैं इस बात को मानना नहीं चाहता था कि हर चीज को ठीक करने से पहले खुद को ठीक करना होगा। मैं पहले खुद को खराब करना चाहता था ताकि दोबारा अव्वल से ठीक करूं, दोबारा अव्वल से ठीक करूं। हाँ, मैं ये चाहता था।
سمیشتن هوا کمه